हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है
जी? मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज़ आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
प्रोग्राम है चैट बस्टर्स। अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आप सुनने जा रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया आसद और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल्ड गिल। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं अपने लैंडलाइन नंबर से मुफ्त कॉल करके 08007778 9 पर। आप हमें कॉल मिलाइए। उस दौरान हम सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि आज हमारे शो में एक मेहमान शामिल होंगे। आपके खतूत यानी फेसबुक पर लिखे गए मैसेजेस, आपके फरमाइशी गाने और आपके कॉल्स। तो आपने फिल्में देखी होंगी जवानी फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी 2, ताके की आएगी बारात, ये ड्रामा है, लेडीज़ पार्क, उमर दादी और घर वाले, आज़र की आएगी बारात, प्यारे अफजल, दिल लगी और फिर पंजाब नहीं जाऊंगी, ये फिल्म है। तो आपने ये सब प्रोजेक्ट जो हैं वो जिन जिन ने देखे हैं वो जानते होंगे कि इनमें से कुछ ड्रामों के डायरेक्टर और कुछ के प्रोड्यूसर और इन दोनों तीनों फिल्मों के डायरेक्टर नदीम बेग आज हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे आप बात कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं और हम उनके गीत भी आपको सुनवाएंगे, उनसे जानेंगे उनके बारे में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहली जो फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं हम, वो अफजल अजीज़ की है, जिन्होंने चकवाल से हमें मैसेज किया था कि वो पीर मेहर अली शाह का कलाम सुनना चाहते हैं। तो अफजल अजीज साहब, आपकी फरमाइश का ये कलाम।
कित मेहर अली, कित तेरी सना, कित मेहर अली, कित तेरी सना, गुस्ताख अखियां, गुस्ताख अखियां,
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया असद, मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं नदीम बेग साहब। नदीम बेग साहब, आप हमारे साथ ही रहेंगे। इससे पहले कि हम आपसे बात करें, दो कॉलर हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से लाइन पर होल्ड किए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। खुशाब से हमें कॉल की है डॉक्टर मोहम्मद आजम ने। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम
जी, बोलिए।
सबसे पहले तो मैं तमाम इस्लामी भाइयों को तमाम गुलामान मुस्तफा रबी अव्वल का चांद नजर आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
जी बोलिए।
और दूसरी बात यह है कि हम सुनते आ रहे हैं कि दिल से दिल को राह होती है। मैं नदीम बेग साहब को आज 2-3 दिन हो गए याद कर रहा था।
क्यों?
کہ ان کی فلمیں دیکھتے تھے, ان کے ڈرامے. میرے پسندیدہ ہیرو ہیں.
یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے.
اچھا
یہ ڈائریکٹر, اس لیے میں نے پہلے بتا دیا تھا ندیم بیگ. جیسے میں نے کہا تھا, میں نے کہا ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں اور فلم رائٹر ہیں.
جی اچھا اچھا, تو چلو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی باتیں سنیں گے, ان سے بھی سوال کریں گے. اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شیر افضل صاحب, ملک رمضان صاحب, انکل غلام امن, غوث محمد, شیرباز بھٹا. اور میں سلام دینا چاہتا ہوں شیر ممتاز رنجن صاحب کو, غلام آباد صاحب, ناصر بھائی, خالد عمر نیاز صاحب, ڈاکٹر لوردا صاحب کو, اور تمام آپ کی ٹیم کو, اور تمام سننے والوں کو.
بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ماجد رحمانہ گھوٹکی سے, السلام علیکم ماجد صاحب.
السلام علیکم راجیہ صاحبہ.
جی کیسے ہیں آپ؟
ہلو.
جی جی بولیے, آواز آ رہی ہے آپ کی.
سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں کو کہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ, میں نے آپ کا فیس بک پیج جو ہے میں نے وہ آپ کا ڈھونڈ لیا.
اچھا ڈھونڈ لیا
آپ کا پروگرام ہوتا ہے نا فیس بک. جی, اور یہ کہتے ہیں ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی,
تو میسج بھی چھوڑنا تھا نا.
دوسرے بات سنیں, بند نہ کیجیے. میرے ساتھ جو ہے نا میرے چاچا جان ہے, وہ بہت آپ کا 40 سال سے پروگرام سنتے ہیں, چودھری نذیر احمد. وہ بھی آپ کو اور خالد حمید صاحب کو پروگرام خوش آمدید کہہ رہے ہیں.
جی بہت شکریہ چودھری نذیر صاحب کا, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ آپ کا ندیم بیگ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنے شارٹ ٹائم میں آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کریں اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ.
تھینک یو جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا, اور اس کے تھرو لوگوں سے بات کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے.
وہ آپ نے ہمارے کالر کی بات سنی نا جو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے تھے؟
جی بالکل سنیے. دس از دا ٹریجڈی آف مائی لائف, ناٹ جسٹ دا ٹریجڈی, ایوری ون تھنکس. سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں وہ ندیم بیگ ہوں جو کہ ماشاء اللہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں. وہ میری ان سے دوستی بھی بہت ہے ندیم بیگ صاحب سے. تو ہماری اکثر ایک بیٹھک ہوتی ہے جاوید شیخ صاحب کے گھر پہ, جس میں ہمایوں سعید, مائی سیلف اینڈ ندیم بیگ صاحب اور میں, ہم مہینے میں ایک دفعہ ملتے ہیں. اور پھر اس بات پہ بڑی گفتگو رہتی ہے کہ مجھے ان کی کالز بہت آتی ہیں, ان کو میری کالز بہت آتی ہیں. جس پہ فائنلی 2 سال پہلے جب مجھے اوارڈ ملا پیارے افضل پہ,
جی جی,
تو بیگ صاحب مجھے اوارڈ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فائنلی آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری ون کہ یہ ہے وہ والے ندیم بیگ جو کہ ڈائریکٹر ہیں, یہ وہ ندیم بیگ ہوں جو کہ میں ہوں جو کہ ایک ایکٹر ہوں.
اچھا تو آپ یہ بتائیں,
لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یو نو آئی ایم دی سیم.
تو جب آپ اس لائن میں آنے کا آپ نے سوچا اور آپ آئے, تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں نام تھوڑا سا چینج کر لوں؟
اچھا نام ڈائریکٹرز نہیں چینج کرتے, نام نارملی ایکٹرز چینج کرتے ہیں. تو میں بیگ صاحب سے یہی کہتا ہوں اکثر کہ آپ کا نام تو ندیم تھا, اب آپ اپنے آپ کو ندیم بیگ کہتے ہیں. اصل میں ان کا نام نذیر بیگ ہے.
جی نذیر بیگ,
لیکن انہوں نے اپنا فلمی نام ندیم بیگ رکھا, ندیم رکھا. تو ہم نے ہمیشہ ان کو ندیم کے نام سے جانا.
بالکل ندیم ہی کے نام سے جانتے
تھے.
اچھا تو ندیم بیگ صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ اور پوچھوں, آپ کی جتنی بھی پروجیکٹس ہیں یا کچھ بھی, میں چاہتا ہوں ایک بریف سا انٹرو آپ ہمارے سننے والوں کو, چھوٹا سا ایک, کہ آپ کہاں پہ آپ نے پڑھا اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر آپ اس لائن کی طرف کیسے آئے. ایک چھوٹا سا بریف سا انٹرو آپ ہمارے سننے والوں کے لیے دیجیے.
دیکھیے جی, میں نے, میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں نے وہیں سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. میں نے وہاں سے گریجویشن کی پنجاب یونیورسٹی سے.
صحیح.
اور اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان اے چینل, ایک این ٹی ایم ایک چینل ہوتا تھا, وہاں سے انٹرنشپ سے میں نے آغاز کیا. اور اس کے بعد بہت سارے پروجیکٹس کیے. جو پہلا پلے مجھے یاد ہے جو کہ لوگوں کو بھی یاد ہوگا شاید, وہ فیملی فرنٹ تھا, وچ واز اے کامیڈی. اس کے بعد میں نے بیگم نوازش علی ایک شو ہوتا تھا.
بطور ڈائریکٹر کیا تھا آپ نے فیملی فرنٹ؟
جی
بطور ڈائریکٹر آپ نے اس میں,
جی جی جی,
فیملی فرنٹ میں.
جی جی بطور ڈائریکٹر.
اچھا
فیملی فرنٹ کیا, جو کہ بہت مشہور سٹ کام تھا,
بہت معروف ہوا, بالکل,
کئی سال چلا. اس کے بعد لیٹ نائٹ شو وتھ بیگم نوازش علی میں نے آج ٹی وی سے کیا. جب میں نے آج ٹی وی جوائن کیا,
وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بالکل مختلف پروگرام تھا.
میں نے ڈائریکٹر کیا.
اچھا.
اور وہ بھی ایک بہت مشہور شو ہوا پوری دنیا میں. اس کے بعد ڈولی کی آئے گی بارات, تاکے کی آئے گی بارات, اور پوری بارات سیریز,
ساری باراتیں آپ ہی لے کے آئے تھے.
جی जी 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 वो किया एंड देन आई मूव टू आई स्टार्टेड वर्किंग विद हुमायूं सईद. तो अभी कंपनी है जो कि हुमायूं और मैं उसको रन करते हैं सिक्स सिग्मा. वहां से फिर मैंने एक पहला सीरियल किया प्यारे अफजल हमजा अली बासी का, वो पहला सीरियल था
जी. खलीलुर रहमान कमर ने लिखा था.
जवानी फिर नहीं आनी का वक्त आया, फिर पंजाब नहीं जाऊंगी, फिर जवानी फिर नहीं आनी टू एंड देन दिल लगी.
आपकी फिल्मों ने बहुत बिजनेस किया है, आपकी फिल्मों ने बड़ा रिकॉर्ड बिजनेस किया नदीम बेग साहब
जी.
आपकी फिल्मों ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया
जी. अल्लाह का शुक्र है तीनों फिल्में जो हैं जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी और जवानी फिर नहीं आनी टू, वो पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोसर हैं अपने वक्त की. तो बस अल्लाह का बड़ा करम है.
नदीम हमारे साथ ही रहिएगा. कुछ फरमाइशी गीत हैं हमारे पास जो हमारे लिसनर्स ने हफ्ता भर हमसे किए हैं, तो हम वो भी साथ साथ सुनवाते रहेंगे और अपनी कॉलर्स जो हैं उनसे बातचीत भी करेंगे. तो आप प्लीज़ हमारे साथ लाइन पर रहिएगा. एक गुरुदास मान का एक गीत सुनना चाहा था हमारे एक लिसनर ने, उनके लिए ये गीत पेश करते हैं और फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे.
सच्चे पातशाह बागुरु जाने की बणु दुनिया का, सच्चे पातशाह बागुरु जाने की बणु दुनिया का, सच्चे पातशाह बागुरु जाने की बणु दुनिया का, सच्चे पातशाह बागुरु जाने की बणु दुनिया का. अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, आए तारे आवे तेरी जुगनी, साईं कोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी. ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਖੇਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਡੀਏ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਚ ਰੁੱਲ ਗਈ, ਸੁਣਦੀ ਗੜੇ ਸੀ ਗਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੂ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗਰੂ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗਰੂ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ. ਸਮੇਲਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ, ਆਏ ਤਾਰੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ, ਸਾਈ ਕੋੜਾ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਜੁਗਨੀ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਮੇਲਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ.
ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ,
ਹੋਰਾ ਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾ ਪੁੱਛਦਾ,
ਹੋਰਾ ਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾ ਪੁੱਛਦਾ,
वेलकम बैक नदीम साहब. इससे पहले कि आपसे बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करें, दो कॉलर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं, हो सकता है वो कुछ पूछना चाहें आपसे. अर्शद नदीम घलू ने भक्कर से कॉल की है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अर्शद, आपको आवाज आ रही है?
जी जी आ रही है
जी, बोलिए
जी. मैं ना सब सुनने वालों को रबी अल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद दूंगा और आपके मेहमान को भी खुश आमदीद कहूंगा. हेलो
जी, थैंक यू
जी. और मैं दूसरे ये कहना चाहूँगा भाई, इस प्रोग्राम में ना मुख्तलिफ ज़बानों में नगमे नशर होते हैं, तो आप इसका नाम रखें दनक रंग उर्दू वी ओ एक के संग.
अच्छा ठीक है
जी. और मेरे साथ कुछ सुनने वाले हैं और एक नात की फरमाइश करना चाहूँगा नेक्स्ट जुमे के लिए.
बोलिए.
جی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.
بہت شکریہ. دور محمد ہے کلات بلوچستان سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیا حال ہے باجی؟
میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بولیے.
طبیعت ٹھیک ہے؟
جی جی.
پروگرام ماشاء اللہ اچھا چل رہا ہے, صحیح لگ گیا باجی. ہمارا ایک فرمائش ہے,
بولیے.
عطا اللہ نیازی کا
کون سا گیت سننا چاہتے ہیں آپ؟
بس جو بھی ہو,
کوئی بھی,
آپ کا مہربانی.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ندیم, آتے ہیں آپ کی طرف. میں آپ نے جتنے بھی پروجیکٹس مجھے بتائے ہیں یا میں نے دیکھے ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو میں نے خود بھی دیکھے اور بڑے شوق سے دیکھے ہیں. تو ان میں ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہی ایک اس کا لطیف پہلو ہوتا ہے, حصے مزاح کا. تو آپ کو خود بھی یہ پسند ہے, آپ کی ذات کا حصہ ہے؟
ذات کا حصہ پتہ نہیں, میں میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا ہے یا نہیں, لیکن مجھے اچھے سینس آف ہیومر کی پہچان ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیز مزاح کے دائرے میں آتی ہے, چاہے وہ ڈرامہ ہو یا فلم ہو, وہ کرتے ہوئے میں بہت خود بھی انجوائے کرتا ہوں اور بہت پیشن سے کرتا ہوں. سو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایکچولی انجوائے ڈوئنگ,
کیونکہ وہ ان سب میں سب سے نمایاں ہے. آپ کے جتنے پروجیکٹ ہیں ان میں سب کی نمایاں بات یہی مجھے لگی.
جی کچھ ایسے ہی ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا ٹریٹ ہوگا وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, ہنسانا لوگوں کو اور ہیومر. لیکن یہ ہے کہ میں نے کچھ چیزیں ایسی بھی کی ہوئی ہیں جو بہت سیریس ہیں, جیسے دل لگی ہے.
دل لگی ہے
کیونکہ بہت ہارڈ کور رومانٹک ڈرامیٹک سیریل تھا. پیارے افضل واز ایکچولی ابھی تک جانا جاتا ہے کہ اس کا جو اینڈ تھا, لوگ اس پہ مجھے ابھی تک معاف نہیں کرتے, اس کا بہت ٹریجک اینڈ تھا.
بالکل یاد ہے مجھے.
تو سو دونوں چیزیں کی ہیں اور دونوں چیزیں لوگوں نے پسند کی ہیں, لیکن کامیڈی یس از سم تھنگ دیٹ آئی ایکچولی انجوائے ڈوئنگ.
تو ندیم یہ بتائیں کہ رائٹر اور ڈائریکٹر جو ہے ان کی کتنی زیادہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے آپس میں؟ جیسے دیکھیں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خلیل الرحمان قمر پیارے افضل کا اینڈ یہ لکھیں, یہ کتنی زیادہ کوآرڈینیٹ ہوتی ہے یہ چیزیں؟
ایکچولی پیارے افضل جب خلیل صاحب نے لکھا تھا
جی,
تو وہ ایک ایسا اینڈ لکھا تھا انہوں نے جو کہ ایک ہیپی اینڈ تھا.
اچھا
جی, جس کو پھر ہم نے میں نے بہت ان سے ضد کی, اصرار کیا کہ اس اینڈ کو ہم اس طرف لے کے جائیں جو کہ ذرا ان ایکسپیکٹڈ ہوگا, ذرا انٹرسٹنگ لگے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کیریکٹر کا انجام کچھ اس طرح کا ہوگا جو کہ بہت ٹریجک تو لگے گا, لیکن یہ ہو سکتا ہے تو اس طرف لے کے جاتے ہیں جس پہ وہ بہت عرصہ نہیں مانے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت میں وہ سین شوٹ کرنے جا رہا تھا, اس سے آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے مجھ سے اگری کیا, اور پھر یہ ہم نے یہ والا جو کلائمیکس جو آپ لوگوں نے دیکھا وہ لکھا سلیم صاحب نے, اور پھر میں نے اس کو شوٹ کیا.
ایک اور بات جو نظر آتی ہے وہ ہمایوں سعید کی موجودگی ہوتی ہے آپ کے موسٹلی پروجیکٹ میں. تو اس کی وجہ سکس سگما ہے یا ویسے آپ کو پسند ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وہی فٹ ہوتے ہیں؟
ابھی تک جتنی چیزیں ہمایوں کے ساتھ کی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو کہ ہمایوں کو ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کی تھی, لیکن پیارے افضل جب کیا تھا تو وہ خلیل صاحب بضد تھے کہ ہمایوں وہ رول کریں. مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمایوں کا رول نہیں ہے, جس میں ہمایوں نے مجھ سے اگری کیا اور ہم نے حمزہ علی عباسی کو کاسٹ کیا, اور جس پہ خلیل صاحب خوش نہیں تھے, لیکن میں نے ان کو کہا کہ یہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ می آن دیٹ کہ ہی از بیٹر فٹ فار دس رول, اینڈ ایونچولی یہی ثابت ہوا کہ وہ بہت اچھا لگا اس رول کے اندر.
جی, اور
یس ہمایوں کے ساتھ ایک سکس سگما بھی ایک ریزن ہے, ہمایوں سے دوستی بھی ایک ریزن ہے, اور ناٹ جسٹ دیٹ, میرا خیال ہے کہ ہمایوں بہت اچھے ایکٹر ہیں اور ہمایوں جیسی اسکرین پریزنس بہت کم لوگوں کی ہے پاکستان میں, تو وائی ناٹ کہ ہمایوں کو وہ اپرچونیٹی ملے جس میں لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں اور ان کو دیکھنا چاہتے ہیں.
آپ نے ظاہر ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس پر کافی کڑا وقت گزرا ہے, اور پھر ایک نئی لہر اس کو ملی اور اچھے پروجیکٹ ملے اور نئے لوگ سامنے آئے. تو اب آپ اس کو کس سمت جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ویسا ہی ہے یا معیار تھوڑا بہتر ہوا ہے, یا پھر سے صرف فلمیں اور نئے پروجیکٹس بنانے کی دوڑ میں کچھ معیار گر گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟
देखें, अच्छी बुरी फिल्म तो हर दौर में बनती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। पाकिस्तानी फिल्म ने पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत अच्छा बिजनेस किया है। कि जब पंजाब नहीं जाऊंगी लगी इंटरनेशनली, तो पंजाब नहीं जाऊंगी पाकिस्तान में ही एक ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई और ऑल टाइम ग्रॉसर साबित नहीं हुई। इसने यूके में जो बिजनेस किया वो किसी भी बड़ी इंडियन फिल्म के मुकाबले का बिजनेस था। इसका मतलब है कि ये वो फिल्म है कि अगर क्वालिटी अच्छी है, फिल्म की कहानी ठीक है, लोग इस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, तो वो फिल्म कहीं पे भी लोगों को सिनेमा तक लेकर आएगी। तो पाकिस्तानी फिल्म का बहुत ब्राइट है फ्यूचर इन पाकिस्तान और इंटरनेशनली ऑल्सो। अभी 3 फिल्में पाकिस्तान में लगी जिसमें जवानी फिल्में आनी थी और परवाज है जुनून और तीफा इन ट्रबल। इन 3 फिल्मों ने बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तान में किया है बॉक्स ऑफिस पे, जिसमें 50-55 करोड़ तो सिर्फ पाकिस्तान में जवानी फिल्में यानी 2 ने किया है। और इसी तरह तीफा ने भी बहुत अच्छा किया, परवाज ने भी बहुत अच्छा किया। तो इट्स अ गुड रेशो कि एक साल में 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर जाएं।
जी नदीम, आपकी इससे पहले कि अगले गीत की तरफ हम जाएं, इसी में से एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि आप बात कर रहे थे कि अगर कहानी अच्छी हो और मायारी हो काम, किसी भी फिल्म को बनाते हुए आप क्या जहन में रखते हैं? जो ट्रेंड चल रहा है वो जहन में रखते हैं, कोई समाजी कोई रस्म और रिवाज आपके जहन में होता है, कोई समाजी आप कह लें कि आपके जहन में होता है कि इसको सुधारना है इस चीज़ को, या फिर कमर्शियल वैल्यू आप देखते हैं? आपके जहन में क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले?
देखिए, कमर्शियल वैल्यू जो है वो फिल्म की कहानी डिसाइड होने के बाद ही उसमें वो चीजें डाली जाती हैं जो कमर्शियल एलिमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले कहानी के मायार पे देखा जाता है कि उसके अंदर जो भी आप बताना चाह रहे हैं कहानी, उसके अंदर चाहे वो एक सोशल मैसेज हो, चाहे वो एक इमोशनल मैसेज हो, वो मैसेज लोगों तक कन्वे हो, और फिर उसमें कॉमेडी भी आएगी, उसके अंदर गाने भी होंगे, उसके अंदर हर तरह का एलिमेंट होगा। जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी वो फिल्म थी जो कि कॉमेडी नहीं थी, लेकिन उसमें एक लाइन जो थी हेल्प मी दुर्दाना, वो इतनी बड़ी क्लिक कर गई कि वो लाइन जब आती थी पूरा हॉल हंस हंस के पागल हो जाता था, हालांकि वो एक कॉमिक लाइन नहीं थी।
और तो, भी उसमें कई ऐसी चीजें थी, बिल्कुल यही उनकी जो खलीलुर रहमान कमर साहब की तहरीर है उसकी यही खूबी है कि वो इतनी स्ट्रांग लाइन बाज दफा लिखते हैं कि वो आपको मुद्दतों याद रहती है। उसमें और भी कई ऐसी लाइंस थी।
जी जी बिल्कुल, और बहुत सारी लाइनें, और खलील साहब जो है आई थिंक वो पाकिस्तान में उनसे अच्छा जुमला बहुत कम लोग हैं जो उसकी कोशिश कर सकते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव।
बिल्कुल, इससे मैं एग्री करती हूँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहें। चलते हैं अगले गीत की तरफ। जितने भी हमारे पाकिस्तान में हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, या फिर भारत में या किसी भी जगह पे जो हमारा शो सुन रहे हैं, उनके लिए मैं दिवाली का ये सॉन्ग उनको सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ।
Thank you.
वेलकम बैक नदीम साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। चंद एक मैसेजेस शामिल करना चाहूंगी फेसबुक पे हमारे सुनने वालों ने भेजे हैं। अतली खान झंग गढ़ मोड़ झंग से लिखते हैं कि मैं बाकायदगी से आपका प्रोग्राम सुनता हूं, एक गीत की फरमाइश की है, नेक्स्ट टाइम जरूर सुनवा देंगे। मोहम्मद नईम ने कोहाट से लिखा है कि मुझे आपका प्रोग्राम पसंद है। इकराम खान लिखते हैं कि मैं पुराना लिसनर हूं और मुझे जो पाकिस्तान में आसिया बीबी की रिहाई के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वायलेंट प्रोटेस्ट किया, वो मुझे पसंद नहीं आया। मैं आपके प्रोग्राम में आके कहना चाहता था लेकिन उस दिन मुझे मौका नहीं मिल सका। तो रोड्स को ब्लॉक करना और लोगों का माल उनसे छीनना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अमन हमेशा एहतजाज हमेशा पर अमन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इकराम खान साहब। तौसीफ शौकी लिखते हैं दरवेश बाग पटन बारामूला कश्मीर भारत से कि मुझे प्रोग्राम बहुत पसंद है और कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है और सेब हमने सब उतार लिए हैं और अब अगले साल के लिए हम ज़मीन तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जिस गीत की फरमाइश की है आज मैंने प्रोग्राम में शामिल किया है। और दादू सिंध से अबू बकर शाहानी ने पूरी टीम को सलाम कहा है, तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जी नदीम, आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताइए कि आपको खुद क्या पसंद है, आप फिल्में देखना पसंद है या कुछ और?
मुझे असल में फिल्में देखने का जो शौक है वही फिल्में बनाने के शौक तक लेकर आया।
अच्छा, मैं
इस तरह का स्टूडेंट होता था कि जब भी हमारा कोई खाली वक्त आता था बिटवीन द प्रैक्टिकल्स एंड आई वुड पुश ऑल माय फ्रेंड्स तो फिल्म देखने चलते हैं, जिसमें बहुत तंग भी आते थे कि फिल्म देखने के अलावा कोई और चीज इसके जहन में नहीं आती, लेकिन आई वॉज एक्चुअली इन लव विद द सिनेमा एक्सपीरियंस और उसको, जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान की तकरीबन यू नो जो भी फिल्में मुझे याद हैं 90s में और लेट 80s में वो सब मैंने देखी हुई हैं सिनेमा में जाके।
तो किस फिल्म ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है आपको, जो याद है आपको, इंस्पायर किया जिसने?
आई थिंक मुझे पाकिस्तान में जो फिल्म याद है वो थी एक नहीं अभी नहीं एक फिल्म थी नजरुल इस्लाम साहब की, फैसल रहमान की वो पहली फिल्म थी।
अच्छा।
और एक बड़ी डिफरेंट फिल्म थी और बहुत रियलिस्टिक फिल्म थी, तो एज अ चाइल्ड आई रिमेम्बर दैट उस फिल्म ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। और उसके बाद बहुत सी फिल्में बनी जिसमें जो और फिल्म मुझे याद है एज कुर्बानी एक फिल्म थी परवेज मलिक साहब की, वो बहुत अच्छी फिल्म थी जो नदीम साहब की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी नदीम एंड शबनम की। तो ये वो फिल्में हैं जो कि बहुत फैसिनेट करती थी मुझे इन द सिनेमा हॉल पाकिस्तानी फिल्म।
सही। अच्छा नदीम, ये बताइए कि जो सिनेमा है जब भारत की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होती हैं, अगर बिजनेस के अलावा आप देखें तो आपके ख्याल में उनका क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को, अदाकारों को, आप थोड़ा सा ये बताइए।
आई थिंक जो इंडियन फिल्में जब पाकिस्तान में आना शुरू हुई हैं उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि सिनेमा पाकिस्तानी फिल्मों की क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इतने ज्यादा सिनेमास चला सकते, तो सिनेमास खत्म हो गए। फिर जब इंडियन फिल्में जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है पूरी दुनिया में, फिर वो जब रिलीज होना शुरू हुई और पाकिस्तान में आना शुरू हुई तो सिनेमास खुलने शुरू हो गए और वो मल्टीप्लेक्स कल्चर पाकिस्तान में आ गया। तो उस मल्टीप्लेक्स कल्चर की वजह से जब बिजनेस बढ़ा इंडियन फिल्म का और सिनेमा का, तो पाकिस्तानी फिल्म के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी, तभी हम फिल्म बना सके और फिल्म पे उतने पैसे लगा सके जो कि कभी पाकिस्तान में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो आई थिंक इंडियन फिल्म्स ने पाकिस्तानी सिनेमा में बहुत कंट्रीब्यूट किया है और इन द फ्यूचर मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन को कभी खत्म नहीं होना चाहिए, दुनिया भर की हर जबान की फिल्में पाकिस्तान में आनी चाहिए, हिंदी भी, ईरानियन भी, इंग्लिश भी, फ्रेंच भी।
नदीम, कोई ऐसा फिल्म मेकर है जिसने आपको मुतासिर किया हो?
बहुत से फिल्म मेकर्स हैं, एक हॉलीवुड के फिल्म मेकर हैं सैम मेंडेस, वो मुझे बहुत पसंद है, इसके अलावा वुडी एलन मुझे बहुत पसंद है, हिंदुस्तान में यश चोपड़ा व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग, उस वक्त मुझे उनकी फैमिली उनकी जो फिल्में हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी और मुझे लगता था कि जो रोमांस वो अपनी फिल्मों में दिखाते हैं वो किसी और की फिल्म में नहीं होता। सो देयर आर मेनी डायरेक्टर्स दैट हैव बीन माय इंस्पिरेशन।
जी, उनका भी सबसे स्ट्रांग पहलू यही है।
हाँ,
بالکل خوبصورت مناظر.
ہیرانی وہ ڈائریکٹر ہیں جو کہ ہمیشہ سرپرائز کرتے ہیں اور بہت اچھی فلم بناتے ہیں.
اچھا اس سے پہلے کہ ہم اگلی فرمائش کی طرف چلیں ایک بات آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. آج کل بڑا چرچا ہے اور بلکہ اس سال کافی اس بارے میں باتیں بھی ہوئیں کہ یہ جو فلموں کے یا گانوں کے ریمیک بنتے ہیں یہ اس کی اصل گانے یا اصل فلم کی روح کو نہیں پہنچ پاتے اور اس کو خراب کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟
آئی تھنک اس میں ایسا ہے کہ دونوں ہی صورتیں ہیں کہ کبھی گانا اگر اچھا بن جائے تو لوگوں کو بہت پسند بھی آ جاتا ہے. جیسے جگنی کوک اسٹوڈیو میں آیا اور وہ جگنی بہت بڑا ہو گیا جو میشا شفیع اور
عارف
لوہار نے گایا. اس کے بعد تاجدار حرم جو قوالی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں
وہ
جب
عاطف
اسلم نے تاجدار حرم کو گایا کوک اسٹوڈیو میں تو تاجدار حرم کو لوگوں نے اتنا سنا اور اتنا پسند کیا جو کہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات
تھی. لیکن ابھی
ریسنٹلی کوکو کورینا احد رضا میر اور
مومنہ مستحسن
کے ساتھ مومنہ مستحسن نے گایا وہ بہت کریٹیسائز
کیا جا رہا ہے. بالکل
تھوڑا سا بچوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی کہ بہت ہی زیادہ کریٹیسائز کر دیا
ہر طرف.
لیکن یہ ہے کہ دونوں صورتیں پاسیبل ہیں.
صحیح. اچھا اسی سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہوں گی اگر آپ کو موقع ملے تو پاکستان کی یا بھارت کی یا کوئی بھی کلاسک فلم کون سی ہے جس کا آپ ری میک بنانا چاہیں گے؟
میں جس فلم کا ری میک بنانا چاہوں گا وہ فلم ہے گائیڈ.
بہت ہی اچھی فلم ہے.
وہ بہت ہی اچھی فلم ہے. یا دو فلمیں ہیں جو میری آل ٹائم فیوریٹ فلمیں, ایک گائیڈ ہے اور دوسری صاحب بی بی اور غلام ہے.
گائیڈ کے تو گیت بھی بہت پسند ہیں.
یا آئی تھنک انڈیا نے اس طرح کی فلمیں, ان کی وہ کلاسک فلمیں ہیں جو کہ آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کو کبھی نہیں لگتا کہ یہ کسی اور دور میں شوٹ ہوئیں. آپ ابھی بھی ان کہانیوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں
اور بالکل وہی فیلنگز آتی ہیں آپ کو, کیونکہ بعض ایسی فلمیں ہیں آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ بعض فلمیں ایسی ہیں جب آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اب اس زمانے میں بالکل سوٹ نہیں کرتی یہ فلمیں, لیکن گائیڈ ان فلموں میں آتی ہے بالکل. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ندیم, اگلے گیت کی طرف چلتے ہیں. آصف خان نے راولپنڈی سے یہ گیت اپنے دوست امجد علی کے نام ڈیڈیکیٹ کیا ہے, کوک اسٹوڈیو ہی کا ہے, ساحر علی بگا صاحب کا, تو سنیے.
ملنگ چکی تائی ڈاڈا دل تنگ جگی تائی مست ملنگ جگی تائی ڈاڈا دل تنگ جگی تائی دے دے تو پیار میں کو یار میرا سونا سونا باہی میرا سونا سونا یار میرا سونا سونا دے دے تو پیار میں کو یار میرا سونا سونا باہی میرا سونا سونا یار میرا سونا سونا
میٹھا میٹھا بولنا چھٹا جیا دل ساڈا دل انج मस्त मलंग चाकी ताई डाडा दिल तंग चाकी ताई दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना यार मेरा सोना सोना
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स. हमारे साथ मौजूद हैं नदीम बेग और इससे पहले कि उनसे बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करें हम एक तो मैसेजेस शामिल करते हैं. ये कौन है जी? नजीर अहमद भिंडर अरूप गुजरावाला से लिखते हैं कि आप सब सुनने वालों को खासतौर पर अंजुम हैरल्ड गिल को मेरा सलाम आप दे दीजिए. तो अंजुम सुन रहे हैं. सलीम अली मिनहास ने सबको सलाम कहा है और अपने दोस्तों को और नजमा जी को सलाम कहा है. बहुत शुक्रिया. शुभ हसन निहालिका रोडा थल खुशाब से लिखते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका के बाकी कुछ प्रोग्राम तो आप खत्म कर रहे हैं, क्या चार्ट बस्टर्स को भी खतरा है? तो प्रोग्राम एक्चुअली बंद नहीं कर रहे शुभ हसन निहालिका साहब, सिर्फ उनका जैसे मेरी कहानी है कुछ तो कहिए है और हरदम रवा है जिंदगी, उनकी जगह हम प्रोग्राम जारी रखेंगे लेकिन वो उस टाइटल के साथ नहीं, बल्कि राउंड टेबल होगा, डिस्कशन होगी, सोशल इश्यूज पे प्रोग्राम किए जाएंगे तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम उनको बंद नहीं कर रहे, सिर्फ मेरी कहानी में उस तरह से आपकी कहानियां नहीं चला करेंगी बल्कि डिस्कशन का प्रोग्राम एक घंटे का होगा, लेकिन जुमे को चार्ट बस्टर्स आपके लिए मौजूद रहेगा. तो थैंक यू सो मच. कुछ कॉलर्स भी हैं हमारे साथ. मुरीद खान है मियावाली से और दूसरे कौन है? तारिक चोकता जी. मुरीद खान आप बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप नदीम बेग साहब से?
अस्सलाम वालेकुम जनाब.
वालेकुम अस्सलाम.
बात कर रहा हूँ. आपके बहुत प्रोग्राम अच्छे होते हैं जनाब. हम 10-15 साल से सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. ये जो नदीम साहब है ना, इनसे मेरी गुजारिश है कि कोई ये जो गद्दार भकारी हैं और ये जो लोग ये कचरा चुनने वाले बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, इन पर कोई फिल्म बनाए ताकि कोई इनके भी सुनने वाला हो बेचारों का. और दूसरी बार से गुजारिश करूंगा कि आप जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं. हमारे दोस्त हैं जियाउल्लाह खान, जिया पेट्रोलियम और हमारे खलुदाद खान और हम सब रात को आपको प्रोग्राम सुनते हैं.
बहुत शुक्रिया.
अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहो.
बिल्कुल. नदीम साहब को एक नया प्रोजेक्ट आपने दे दिया है, अभी जानते हैं उनसे, लेकिन इससे पहले तारिक चुगताई साहब से बात करते हैं जिन्होंने चूनिया कसूर से हमें कॉल किया. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम. बहन सबसे पहले तो मैं सबको रबीउल अव्वल की मुबारक देना चाहता हूँ. उसके बाद मेरे तमाम हिंदू भाई जो पूरी दुनिया में रहते हैं उनको ये रोशन दिन की मुबारक दिवाली की. तो नदीम बेग साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो एक अजाफा कर दें किसी फिल्म या तहरीर में. ये जो मजहबी वायलेंस होती है ना, ये जो नजरियात से खेलना किसी के, ये जैसे अभी वाकया हुआ चंद दिन पहले कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने तो पूरा केस सुनने के बाद उस मेरी बहन को बरी किया. शायद किसी को बुरा लगे लेकिन मैं बहन ही कहूंगा. लेकिन वो चंद नासमझ लोगों ने उसको ऐसे कि वो आपने ही प्रोग्राम किया था जिसमें आपने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये किया तो खुश होना चाहिए कि हजूर सल्लम की तोहीन का पहलू नहीं निकला. तो उसमें तोड़ फोड़ ये ऐसे जो करते हैं मजहबी जज्बात से खेलते हैं. नदीम भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कुछ ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी फिल्म वो अगर हो जाए तो वो एक बहुत अजाफा होगा.
नदीम साहब से जानते हैं जी.
बहन भाई
बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जी. नदीम बेग साहब आपने दोनों हमारे जो कॉलर्स थे उनके सवाल सुने. सबसे पहले तो मुरीद खान जो प्रोजेक्ट आपको दे रहे थे उसके बारे में कुछ कहिए.
जो सोशल इश्यूज हैं जिसमें जैसे उन्होंने कहा कि जो बच्चे भीख मांगते हैं या जो
बच्चे चाइल्ड लेबर आप समझ लें इसको ऑन अ इशू लेवल, उसके ऊपर टीवी पे भी काम होता रहा है और फिल्म में भी मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम सोशल इश्यूज की फिल्में बनाएंगे जो कि अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में जो करना चाहिए फिल्म्स को वो जरूर करें। दूसरी बात जो उन्होंने कही जो दूसरे साहब थे अबाउट रिलीजियस इंटॉलरेंस, आई थिंक ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें फिल्म बनानी चाहिए और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा उतना टॉलरेंस डेवलप होगी लोगों में जो इस तरह के सब्जेक्ट को वो देखना चाहते हैं तो वो पेशेंस से इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म देखेंगे। तो बिल्कुल हमारे जहन में ये सब चीजें चलती हैं कि आजकल क्या हो रहा है और उसी मौजू पे फिल्म भी बननी चाहिए और हम उसको एड्रेस करेंगे व्हेनेवर द टाइम कम्स।
अच्छा ये बताएं नदीम साहब, बल्कि हमारे प्रोड्यूसर हैं अंजुम हेरल्ड गिल साहब, उनकी तरफ से सवाल आया है कि आप अपनी फिल्म की जो फाइनल फिनिशिंग है वो कहाँ से करवाते हैं?
फिल्म की फाइनल फिनिशिंग अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज आ गई हैं, वो सब कुछ हम पाकिस्तान में करते हैं। जो जवानी फिर नहीं आनी 2 है उसकी कम्प्लीट पोस्ट प्रोडक्शन, कलर ग्रेडिंग, VFX, एनिमेशन, वो सब कुछ वही हुआ हुआ है सिवाय साउंड मिक्स के। साउंड मिक्स वो हम इंडिया से करवाते हैं, वहाँ पे फ्यूचर वर्क एक कंपनी है जिनसे हमारे जिनके साथ मैंने 3 फिल्में की हैं एंड दे आर यू नो वेरी गुड पीपल आल्सो एंड दे डिलीवर देयर बेस्ट। साउंड एक एरिया है जिसमें हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है, उसके अलावा बाकी सब चीजें पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसमें लोग डेवलप हो रहे हैं। तो अब समझ लें 90% का काम वो यही होता है।
और मौसीकी और गुलुकार कैसे डिसाइड करते हैं आप, कहां से?
मौसीकी तो देखें ना पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी है, अभी आपने बहुत सारे गाने अभी बग्गा साहिर अली बग्गा का आपने ये वाला सॉन्ग चलाया मस्त मलंग, साहिर ने मेरी तीनों फिल्मों में एक एक गाना किया है और पाकिस्तान में बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम कोशिश ही करेंगे कि हमारा म्यूजिक जो है उसका अपना एक फ्लेवर होता है, उसको भी मौका मिले, उन लोगों को भी मौका मिले जो म्यूजिक बनाते हैं जो गाते हैं फिल्म के लेवल पे आने के लिए, फिल्मों में उनके गाने लोग देखें एंजॉय करें। सो आई वुड लाइक टू स्टिक टू पाकिस्तानी म्यूजिक।
और आपने अपने जितने भी फिल्में की हैं उनमें आपने सारे पाकिस्तानी गुलकार और मौसीकार जो है उन्हीं को मुतारिफ करवाया है, उन्हीं के साथ काम किया आपने?
जी बिल्कुल उन्हीं के साथ काम किया है, लेकिन पंजाब नहीं जाऊंगी मैं। ऐ दिल एक गाना था जो कि जुनीता गांधी एक बड़ी अच्छी सिंगर है इंडिया की, उन्होंने वो गाना गाया था, उसको कंपोज किया था हमारे बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको लगा कि ये गाना उनको गाना चाहिए, शिराज उपल
जी,
तो शिराज ने वो गाना उनसे गवाया और उन्होंने बहुत अच्छा गाया। तो मेरा ख्याल है कि कहीं आपको लगता है कि कोई आवाज आपको इंडिया से चाहिए, जिस तरह आतिफ असलम और
राहत साहब और शफकत अहमद
इंडिया में इंडिया की फिल्मों के गाने गाते हैं, इस तरह उनके सिंगर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स भी पाकिस्तानी फिल्मों के लिए काम करेंगे और हम उनसे भी काम करवाएंगे।
और जो एक कमजोर पहलू ख्याल किया जाता है वो कोरियोग्राफी है पाकिस्तान में, तो आप बताइए कि अब क्या हाल है और क्या आप पाकिस्तान ही से लेते हैं कोरियोग्राफर या इसके लिए भी आप बाहर ही रुजू करते हैं?
अभी तक मैंने अपनी तीनों फिल्मों में जो कोरियोग्राफर है वो इंडिया से ही लिया है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है गाना पिक्चराइज करने में, डांस में, उसमें दे आर अहेड ऑफ अस बिकॉज डांस स्कूल्स इतने हैं इंडिया में और कोरियोग्राफी पे वहाँ पे बड़ा कंपटीशन भी है और मुझे लगता है कि ये वो एरिया है जिसमें पाकिस्तान में अभी बहुत जरूरत है इम्प्रूव करने की। सो मैंने अभी तक तो इंडियन कोरियोग्राफर के साथ काम किया है, लेकिन एक गाना था जो एक पाकिस्तानी कोरियोग्राफर के साथ भी किया था। सो यू नो मुझे लगता है कि इवेंचुअली आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी कोरियोग्राफर्स भी लर्न करेंगे और उस लेवल तक पहुंचेंगे जब हमें जरूरत ना पड़े और यहीं से टैलेंट है उनको मौका दिया जाए।
जी नदीम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके, आप हमारे साथ ही रहिए। एक और गीत प्ले करते हैं जिसकी फरमाइश काफी हफ्तों से हमारे एक लिसनर हैं सैयद हबीब हुसैन शाह रावला कोट से, वो कर रहे थे, हमेशा बड़ी बाकायदगी से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो हबीब हुसैन शाह साहब आपकी पसंद का ये गीत।
कहो जी तुम क्या क्या, सुनो जी तुम क्या क्या, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे।
हमारे साथ दो कॉलर हैं, जहूर अहमद ने हमें कॉल की है चागी से, उनसे बात करते हैं। जी जहूर अहमद साहब, आप प्लीज अपना रेडियो बंद कर दें।
बंद करते
अच्छा जी, बोलिए आवाज आ रही है आपकी?
आवाज आ रही है हमारी? नहीं
जी जी, बोलिए आप, आ रही आवाज?
और खैर खैरियत के लोग, हेलो
जी। Hello? जी बिल्कुल, खैर खैरियत भी बता दी है आपको, आप कुछ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?
मैं बाजी, मेरा एक फरमाइश है, पूरा करो।
बिल्कुल करें।
अल्लाह नियाजी का जो गाना है, स्पेशल गाना है, जो गाना आप लोगों के पास है, एक गाना सिर्फ हमारे लिए आज लगाना बस, आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी होगा।
अगले जुमे को लगा दूं? बहुत शुक्रिया, अगले जुमे को जरूर लगाऊंगी, क्योंकि एक और फरमाइश भी आई है, दूर मोहम्मद ने भी सुनना चाहा है। तो मोहम्मद अली है हमारे साथ राजनपुर से, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो?
बिल्कुल ठीक, बोलिए।
बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नदीम भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि जो वेलकम टू कराची फिल्म है, टोटल इंडिया की जो है, ये पाकिस्तान में बना है, ये कराची में वाकई बना है ये, या हिंदुस्तान में बना है?
बहुत शुक्रिया जी। नदीम बेग साहब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो वेलकम टू कराची फिल्म है, वो क्या जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था वो पाकिस्तान में शूट हुआ है या वहीं हुआ है?
नहीं, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो पाकिस्तान में शूट नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ शॉट्स होते हैं, जैसे कराची के एरियल शॉट्स हैं, जैसे हम भी बाज़ात दुनिया में कहीं भी शूट कर रहे हो, तो वहाँ के एरियल शॉट्स हमें लेने नहीं पड़ते, क्योंकि वो वहाँ से मिल जाते हैं, जो वहाँ की डिफरेंट कंपनीज ने शूट किए होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कराची के एक्सटीरियर शॉट्स और रिनाउंड बिल्डिंग्स के शॉट्स थे, वो उन्होंने यहाँ से लिए थे, लेकिन बाकी सारी फिल्म वो बाहर ही शूट हुई हुई है इंडिया में।
बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि बातचीत का सिलसिला खत्म हो। नदीम साहब, बहुत सारी बातें पूछने को दिल कर रहा है। मुझे ये बताएं कि जब भी कोई नॉवल या बुक ऐसी कोई आपको पसंद हो जिसपे आपने सोचा हो कि इस पे फिल्म बनाऊं, है कोई ऐसी बुक नॉवल?
मैंने अभी मैं एक आध किताब पढ़ रहा हूँ, उस पे मेरा बहुत दिल किया कि मैं उसके ऊपर फिल्म बनाऊं, शाहिद उमर की किताब है वो। लेकिन एक किताब जो कि मैंने चेतन भगत की पढ़ी थी, हाफ गर्लफ्रेंड,
तो वो बन चुकी
है। वो किताब पढ़ी तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं हुमायूं को कहता था कि हुमायूं, इस फिल्म के, इस किताब के राइट्स हम ले लेते हैं, ऑल्दो चेतन भगत की सारी फिल्मों के राइट्स ज्यादातर करण जौहर ने लिए थे और उन्होंने टू स्टेट्स भी बनाई और थ्री इडियट्स भी बनी उनकी किताब पे जो कि राजू हिरानी ने बनाई थी. हाफ गर्लफ्रेंड वो फिल्म थी जो कि मुझे बहुत अच्छा पसंद था नॉवेल, फिर उस पर फिल्म भी बनी. जब मुझे पता चला कि उस पर फिल्म बन रही है तो मेरा दिल बहुत टूटा. मैंने कहा चलें अच्छी बनेगी फिल्म, लेकिन जब फिल्म मैंने देखी तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी.
एग्जैक्टली यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि बाकी दोनों ने तो किया है इंसाफ बुक के साथ, लेकिन इस फिल्म ने बिल्कुल नहीं किया.
हाँ, इस फिल्म से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ. हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से जो मुनासिब लगा जो उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन वो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग थी. किताब बस फार सुपीरियर देन द फिल्म,
यही कहा गया उसके बारे में. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो तीन फिल्में आपने अभी तक बनाई हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप दोबारा से उन फिल्मों को बनाएं, कोई ऐसी कमी देखते हैं आप जो आप ठीक करना चाहें या कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें, तो क्या होगा वो?
ये एक बहुत लंबी लिस्ट है उन कमियों की जो मैं उनमें करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर मेरे अलावा भी अगर होगा वो मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने ही काम के बारे में. तो मुझे लगता है कि मैं वो वाला सीन को कुछ यूं कर लेता, उस कैरेक्टर में मैं किसी और को कास्ट कर लेता, वो गाने की बजाय मैं कोई और गाना ले लेता. तो यू नो ये वाली डिसअपॉइंटमेंट्स रहती हैं साथ, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप उन चीजों से सीखें और अगली दफा उन कमियों को पूरा करें या वो गलतियां ना दोहराएं, इसी की कोशिश करता हूँ.
नदीम साहब, वक्त कम रह गया है और अंजुम ने बड़ा अच्छा एक सवाल किया है. आपने, अगर मैं वो जो बारातों का पूरा सिलसिला है उनको देखूं, पंजाब नहीं जाऊंगी को आप देखें, तो जो एक पंजाबी करैक्टर है ना, काफी मजबूत करैक्टर आपने उन दोनों में पेश किए हैं. तो अंजुम का ये सवाल है कि क्या आपने पंजाबी फिल्म बनाने के बारे में सोचा है, क्योंकि आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं पंजाबी.
पंजाबी फिल्म इज माई ड्रीम. वंस इन माई लाइफ टाइम आई विल मेक अ पंजाबी फिल्म, बिकॉज ये एक वो इंडिजिनस सिनेमा है पाकिस्तानी जिसने जो पिछले 50-60 सालों से पंजाबी फिल्म बनती रही है और अब नहीं बन रही. सो अब एक फिल्म आ रही है मौला जट, जो कि एक पंजाबी फिल्म है जो बिलाल अशारी ने बनाई है, जिसमें जो कि फवाद खान की पहली फिल्म है. लेकिन मैं शायद अगले से अगले साल यानी 2020 में पंजाबी फिल्म बनाऊंगा और वो भी एक पीरियड फिल्म होगी.
बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. बातें तो भी बहुत हैं, फिर मैं सोच रही हूँ किसी वक्त आपको इनवाइट किया जाए और आप शो में आएं और सिलसिला यहीं से शुरू करें, ठीक है?
तो आप जी, थैंक यू सो मच,
बहुत शुक्रिया.
आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू ऑल द लिसनर्स.
और आप ही की फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी के इस गीत के साथ सादिया असद, अंजुम हेरल्ड गिल को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पान.
जाके मुकना मैनू नहीं है पता किथे जाके रुकना, जिंदगी दा है सफर किथे जाके मुकना मैनू नहीं है पता मैं किथे जाके रुकना. उन्ने
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
अमरीकी फनकारों का बैंड संगत मौसीकी के जरिए अमन फैला रहा है. खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील. कराची में कायम मुल्क भर की अपनी नौयत की वाहिद म्यूजिक एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स या नेपा, जहाँ एक अरसे से पाकिस्तानी फनकारों को मौसीकी और परफॉर्मिंग आर्ट्स की जदीद खतूत पर तरबियत दे रही है, वहाँ वो मौसीकी के मुतादिद गैर मुल्की इदारों के इश्तराक से मौसीकी के शोबे में जिद्दत पैदा करने की कोशिश भी कर रही है. ऐसी ही कोशिश امریکی اور پاکستانی گلوکاروں، نغمہ نگاروں اور موسیقاروں پر مشتمل ایک بینڈ سنگت کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ گزشتہ دنوں نیپا کے ایک گریجویٹ اور اس کی فیکلٹی کے ایک سابق رکن نادر عباس ہاشمی نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں سنگت کے بارے میں گفتگو کی۔
ہماری جو یونیورسٹی ہے نیپا، اس کی کولیبریشن ہوئی تھی یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک ڈپارٹمنٹ سے، جو کہ بٹلر اسکول آف میوزک ہے، 2014 سے۔ تو 2014 سے ہمارے اسٹوڈینٹس وہاں جا رہے تھے اور ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ ہمیں آن لائن کلاسز بھی دیتے تھے اور کراچی نیپا میں آگے بھی ہماری ورک شاپس کنڈکٹ کرتے تھے، تو میں بھی اس پارٹنرشپ کا ایک حصہ تھا۔ 3 سال کی یہ پارٹنرشپ تھی جناب۔ تو جب پارٹنرشپ اینڈ ہوئی تو اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں ایک میوزیکل بینڈ وجود میں آیا جس کا نام تھا سنگت۔ سنگت کی کچھ تشکیل ایسے تھی کہ 6 لوگ جو تھے وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزیشنز تھے، جو وہاں میوزک کی تعلیم بھی دیتے تھے، جو وہاں کے اساتذہ تھے، ٹیچر تھے، اور 6 لوگ جو تھے وہ کراچی نیپا سے تھے۔ تو 12 لوگوں پہ مشتمل یہ ایک بینڈ سنگت تھا، جن کے ساتھ ہم نے بہت سارے کلاسیکل فیوژنز ریکارڈ کروائے اور بہت سا میوزک، اوریجنل میوزک کمپوز کیا، جس میں کئی کمپوزیشنز جو تھیں وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے جو میوزک ڈپارٹمنٹ ہے، بٹلر اسکول آف میوزک، وہاں کی فیکلٹی کی تھیں، اور کافی ساری کمپوزیشن ہمارے ہاں یعنی کراچی نیپا کے جو ٹیچر تھے ان کی تھیں۔ تو یہ دونوں کی مشترکہ کاوش تھی، جو کہ پورا پروگرام تھا جو کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ کے زیر اثر تھا، انہوں نے اسپانسر کیا تھا۔ تو بہت مزہ آیا اس گروپ میں کام کرنے کا، اور ہم 12 لوگ ہیں، سنگت ہمارے گروپ کا نام ہے، اور ہم پوری دنیا میں امن و آشتی اور پیس کا پیغام پھیلاتے ہیں تھرو میوزک۔
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ نیپا کے اساتذہ کے ایک گروپ کو 2015 میں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ٹیکسس میں میوزک کا 6 ماہ کا ایک تربیتی کورس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، جس سے نہ صرف ان کے علم اور تجربے میں بہت اضافہ ہوا بلکہ انہوں نے پاکستان واپس آ کر امریکہ میں سیکھے ہوئے موسیقی کے جدید طریقوں اور انداز کو سامنے رکھ کر اکیڈمی کے لیے موسیقی کا ایک نیا نصاب بھی ترتیب دیا۔
ہم نے سب سے پہلے آ کے اپنا یونیورسٹی کا، اپنے نیپا کا کورس ڈیولپ کیا، تھوڑا کریکولم چینج کیا۔ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی جو ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں، جو ہم اسٹوڈینٹس کو سکھاتے تھے، ریگارڈنگ ووکل، ریگارڈنگ سنگنگ، ریگارڈنگ تھیوری، پریکٹیکل، یہ سب ہم نے ضرور اس میں شامل کی، اور اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ وہاں پوری دنیا میں میوزک کیسا ہوتا ہے اور ہمارا میوزک ایسا ہے۔ بہت ہیلپ ہوئی ہمیں اس بارے میں۔
نادر عباس ہاشمی نے کہا کہ جب سنگت بینڈ کے امریکی فنکاروں نے پاکستان آ کر ان کے ساتھ مل کر متعدد تقریبات میں پرفارم کیا، خاص طور پر جب ان کے ساتھ مل کر اردو زبان میں قوالی پیش کی، تو پاکستانی شائقین نے انہیں بہت سراہا۔
سنگت کی جو سانگ لسٹ ہے نا جی، اس میں پاپ گانے بھی ہیں، اس میں کلاسیکل بندشیں بھی ہیں، اس میں ترانے بھی ہیں کلاسیکل، اور اس میں قوالی بھی ہے۔ تو آپ سن کے بڑی حیران ہوں گی کہ وہاں ہمارے جو آسٹن میں جو بینڈ میں ایک ووکلسٹ ہیں، ان کا نام ہے لورا، وہ ایک فیمیل ووکلسٹ ہے جو کہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کر رہی ہیں میوزک میں۔ تو انہوں نے باقاعدہ وہ قوالی یاد کی، اور قوالی یاد کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ انہوں نے پرفارم کیا، دیٹ واز ونڈرفل۔ انہوں نے ایکسنٹ یاد کیا، اللہ جو نصرت علی صاحب کی قوالی ہے نا جی، اللہ اللہ اللہ، تو یہ بھی ہماری سانگ لسٹ میں ہوتی ہے ہمیشہ۔ انہوں نے یاد کیا اردو گانا اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ گایا۔
پاکستانی اور امریکی فنکاروں کے بینڈ سنگت کی ایک قوالی، جس کے لیڈ سنگر اور کمپوزر نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ ان کا بینڈ موسیقی کے ذریعے امن پھیلانے کے لیے کوشاں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔